ज्ञान चंद्रिका लब्धि सार क्षपणा सार लेक्चर नंबर 7
सिद्धे जिनेन्द चंदे आयरी अवच्छाय साहु गणे वंदीय सम्मदंसन चरित लद्धिं परुवेनु।
आचार्य श्री निमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने इस लब्धिसार ग्रंथ की रचना की है, उसी के आधार से पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका लब्धिसार क्षपणासार टीका जो भाषा टीका ढूंढारी भाषा में लिखी, उसी ढूंढारी का यहाँ हिंदी अनुवाद हम देख रहे हैं और हम आए हैं पृष्ठ संख्या 24 पर। अभी आप तो आज ही आए ना जितू भाई, हमने क्या कह, ये सब भूमिका की बात चल रही है। यहाँ तो कुछ टर्मिनोलॉजी कुछ पारिभाषिक शब्द बताने जा रहे हैं, हमने थोड़े देखे थे और भी कुछ की बात चली थी। तो यहाँ लब्धिसार जो ग्रंथ है, लब्धि यानी लाभ प्राप्ति उपलब्धि, तो हमारा लाभ किसमें है, तो मोक्ष प्राप्ति में। तो मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है, तो कहते हैं दर्शन लब्धि और चारित्र लब्धि से, यानी सम्यक दर्शन और फिर आत्म स्थिरता से मोक्ष मार्ग शुरू होते होते पूर्णता को पहुंचता है और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अब ये दर्शन और चारित्र के कारण क्या क्या होता है उसकी बात बताने के पहले यहाँ कर्मों की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है उसकी चर्चा यहाँ 11 नंबर के पृष्ठ पर की है। आप निकालना, हम क्या क्या देख के आए हैं उसकी बात हम करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ग्यारह नंबर जो राइट साइड में नंबरिंग है उसको 11 नंबर निकालना। तो यहाँ कर्मों की 10 अवस्थाएं बताई है, उसको 10 करण भी कहते हैं। करण यानी परिणाम को भी करण कहते हैं, यहाँ कर्मों की अवस्था को भी करण कहा। करण के और कोई अर्थ मालूम है? नहीं, मैं करण शब्द के और कोई अर्थ, इंद्रिय को भी करण कहते हैं। हाँ, हाथ को करण नहीं, कर कहते हैं।
करण
साधन को करण कहते हैं, इंद्रियों को करण कहते हैं। अंतकरण यानी वो इंद्रिया मन हो तो अंतरंग जो इंद्रिय उसको करण कहा। गणित के जो सूत्रों को भी करण सूत्र कहते हैं, करणान योग नाम भी हमने देखा था। तो यहाँ जो कर्मों की 10 अवस्थाएं हैं तो कौन कौन सी है सुशीला बेन बताएंगे? हाँ, बंध सत्ता को ही दूसरा नाम है, यहाँ सत्व लिखा है, उदय और उदीर्णा, फिर उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण उपशम निधत्ति और निकाचना, ये 10 प्रकार के अलग अलग अवस्थाएं हैं। तो बंध होता है ना, क्या होता है, तो जो कारमान वर्गणा नाम के जो पुद्गल स्कंध पड़े हैं, जहाँ जीव है उसी प्रदेशों में कारमान वर्गणाएं पड़ी है। तो जीव के यहाँ मोह राग द्वेष होते हैं, तो वहां की कारमान वर्गणा कुछ कारमान वर्गणा है वो कर्म रूप परिणमित होती है और आत्मा के प्रदेशों के साथ बंधी हुई पड़ी रहती है। जब उदय का काल आता है तो उसका फल मिलता है, वो खिर जाते हैं कर्म, कर्म से अकर्म रूप अन्य पुद्गल सामान्य पुद्गल हो जाता है। तो जो आत्मा के साथ अभी उसको बंधी है उसको कहेंगे बंध हुआ। तो ये जो बंध हुआ उसको 4 प्रकार से बताते हैं, क्योंकि जब बंध होता है तो ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनीय आदि 8 प्रकृतियों में परिणमित होता है, तो उसको कहेंगे प्रकृति का बंध, प्रकृति बंध। जितने नंबर ऑफ परमाणु आते हैं उसको कहेंगे प्रदेश बद्ध। यहाँ लिखा है देखो, कर्म रूप नवीन पुद्गलों का आत्मा से संबंध होना उसका नाम बंध है। वो कितने प्रकार का है? चार। कौन कौन से? प्रकृति बंध, यानी कौन सी प्रकृति बनती है। प्रदेश बंध यानी परमाणुओं की संख्या। स्थिति बंध यानी कितने काल तक वो रहेगा जीव के सत्ता में, उसको स्थिति बंध कहते हैं। और अनुभाग बंध, फल कितना देगा उसके लिए अनुभाग बंध कहते हैं। ऐसे ही हमने सत्वों में भी चार प्रकार देखे, कौन सी प्रकृति सत्ता में पड़ी है उसको प्रकृति का सत्व कहेंगे, सत्ता में जितने परमाणु उसको प्रदेश सत्व कहेंगे, सत्ता में जितनी स्थिति बाकी है उसको स्थिति सत्व कहेंगे, और सत्ता में अनुभाग के कैसे कैसे वेरिएशन है उसको हम अनुभाग सत्व कहेंगे। उदय में भी ऐसा ही है। देखो जीव के साथ कर्म बंधा है, कितने ही काल तक पड़ा रहता है और बाद में निकल जाता है तो उसको कहेंगे उदय हुआ। और फल कब मिलता है? जब उदय होता है तब। सत्ता में कितना भी हम हमारी भाषा में आकरा कर्म कुछ हो या अच्छा भी हो बुरा भी हो उसका कोई फल नहीं मिलता, उदय में आता है तब उसका फल मिलता है। तो उदय भी कौन से प्रकृति का उदय, उसको हम प्रकृति उदय कहेंगे। प्रदेश उदय ने कितने परमाणु एक साथ उदय में आते उसको प्रदेश उदय कहेंगे। स्थिति उदय ने एक वर्तमान की जो स्थिति जो निषेक है वो उदय रूप है उसको स्थिति उदय कहेंगे। और अनुभाग उदय किस रूप से फल मिलता है, तीव्र अनुभाग का के मंद अनुभाग का, उसको अनुभाग का उदय कहेंगे। सत्ता में पड़े पड़े उदीर्णा की भी बात है। उदीर्णा किसको कहना कि जो अभी एक शब्द आता है निषेक, निषेक का अर्थ क्या होता है कि जिनकी जिनकी स्थिति समान है ऐसे जो परमाणुओं के समूह को हम निषेक कहेंगे। तो उसको हम कहेंगे नीचे के निषेक यानी जल्दी उदय में आने वाले, यानी समान जिनको स्थिति है ऐसे परमाणुओं का जो लॉट है उसको हम क्या कहेंगे, निषेक। जब कर्म बनता है तो अनंत परमाणु बनते हैं और अलग अलग परमाणुओं में अलग अलग स्थिति पड़ती है। क्या क्या होता है बंध के समय उसकी बात करेंगे, क्योंकि ये शब्द बारंबार आने वाले हैं। वर्तमान में यहाँ बंध हुआ कर्मों का, तो वहां अनंत परमाणु कर्म रूप परिणमित हुए, तो उसमें स्थिति किसमें कितनी अलग अलग परमाणु में अलग अलग होती है। तो कुछ काल के लिए तो उदय में ही नहीं आते, तो उसको हम कहेंगे आबाधा कांड, आबाधा काल, कांडक नहीं आबाधा काल। उसके बाद एक निषेक, यानी ये आबाधा काल के बाद एक समय में ये सभी उदय में आने योग्य है तो उसको कहेंगे पहला निषेक, दूसरा निषेक, तीसरा निषेक, चौथा निषेक, ऐसे जितने अनेक कोड़ा कोड़ी सागरों के निषेक है एक एक समय में एक एक निषेक, इसका नाम क्या है, निषेक। अब बंधे थे तभी तो ये पोजिशन थी। बंधने के बाद सत्ता में मिल जाते हो, अभी सत्ता में भी किसी का उदय चल रहा है। ऊपर के निषेकों में से थोड़े थोड़े परमाणु नीचे आते रहते हैं और अपने नीचे सभी निषेकों में जा मिलते हैं। नीचे उदय के समय से लेकर एक आवली काल तक के जो निषेक है उसको कहेंगे उदयावली। तो ऊपर के जो कुछ थोड़े थोड़े परमाणु नीचे आकर उदयावली मिल जाते हैं और उसके साथ उदय होता है उसको कहेंगे उदीर्णा हुई, इसको कहते कर्मों की उदीर्णा। और रेगुलर जो नीचे आकर उदय में आते उसको कहेंगे उदय। यहाँ उदय तो इसका हो ही रहा था, इसके साथ ऊपर के कुछ परमाणु और भी उसके साथ जुड़ गए और उनका भी उदय हुआ, तो हम कहेंगे इनकी उदीर्णा हुई। अब आगे कौन सा लिखा है, पांचवे नंबर उत्कर्षण। उत्कर्षण का अर्थ होता है किसी स्थिति में जो कोई परमाणु पड़े हैं और अभी नया बंध होता है तो नए बंधने वाले की जो स्थिति है तो यहाँ के उदयावली के ऊपर के कुछ निषेकों के परमाणु ऊपर चले जाते हैं अपनी अपनी स्थिति के ऊपर, उसको क्या कहेंगे, उसकी स्थिति बढ़ गई, उत्कर्षण। अब यहाँ ये उत्कर्षण के लिए नए बंद की आवश्यकता है, परंतु अपकर्षण तो रेगुलरली होता रहता है, अपने अपने नीचे कुछ परमाणु नीचे आते रहते हैं, पूरा निषेक नष्ट नहीं होता है, कुछ परमाणुओं का नीचे आना उसको कहेंगे अपकर्षण। उसके बाद आता है नंबर संक्रमण। संक्रमण का अर्थ क्या है, ये सत्ता में बहुत सारी प्रकृतियां पड़ी है, तो जो मूल प्रकृतियां हैं, मेन जो आठ है उसको कहेंगे मूल प्रकृति, और जो प्रकृतियों के सब डिविजन है उसको कहेंगे उत्तर प्रकृति। तो उत्तर प्रकृतियां आपस में संक्रमित होती रहती है, जैसे चारित्र मोहिनी में हमें मालूम है अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ है, अप्रत्याकरण प्रत्याकरण संज्वल, उनका भी आपस में संक्रमण चलता रहता है। तो ये जो संक्रमण है, पर प्रकृति रूप होना, या मोक्ष मार्ग में ऊपर के गुण स्थानों में जाता है, या जहां विशुद्धि बहुत ज्यादा बढ़ती है वहां अप्रशस्त प्रकृतियां भी प्रशस्त रूप संक्रमित होती है, उसको कहेंगे प्रकृति का, यानी संक्रमण नाम दिया भी, उसके डिटेल में नहीं जाना हमें। उसके बाद नंबर है यहां लिखा है उपशम। एक होता है औपशमिक भाव वाला उपशम, उसकी बात यहां नहीं है। यहां उपशम से क्या समझना है कि कर्म सत्ता में पड़ा रहता है, वो भले ऊपर नीचे चला जाए परंतु वो उदयावली में जा नहीं मिलता, उसकी उदीर्णा नहीं होती, यानी उदय रूप नहीं होता। क्रम से उदय में आना बात अलग है, परंतु वहां नीचे आता है तो अपकर्षण होता है, ऊपर जाता है तो उत्कर्षण होता है, परंतु कुछ परमाणु ऐसे हैं, इसमें से भी उदयावली में जाएंगे उदीर्णा होगी, परंतु कुछ परमाणु ऐसे भले नीचे ऊपर चले जाए पर उसकी उदीर्णा नहीं होगी, वो उदय में नहीं आगे, तो उसको क्या कहेंगे, वो उपशांतकरण चल रहा है। अब निधत्ती नाम के परमाणु ऐसे क्या कहते, उसको निधत्ती का क्या स्वरूप देखा था, यानी उनका तो उदीर्णा तो होती ही नहीं है, पर प्रकृति रूप संक्रमण भी नहीं होता, संक्रमण नहीं, संक्रमण नहीं है और उपशम है, उपशम है, उपशम है का अर्थ क्या है, उदीर्णा नहीं होती, उदयावली में नहीं आते, नहीं उपशम है, उपशम करण चल रहा है उनका, निधत्तीकरण चल रहा है, निकाचनाकरण चल रहा है, उसका अर्थ क्या है, उदयावली में नहीं आते, उसका अर्थ है वो उपशम चल रहा है, संक्रमण नहीं होता और उपशम भी चल रहा है, उदयावली में भी नहीं आते, पर प्रकृति में संक्रमित भी नहीं होते, अपकर्षण उत्कर्षण हो सकता है, उसको क्या कहेंगे, निधत्ती टाइप के परमाणु, कोई विशिष्ट कर्म निधत्ती निकाचना नहीं होता, क्योंकि जो निषेक रचना हुई है कुछ परमाणु ऐसे है अपनी जगह बने रहते, तो ऐसे कुछ है कि उसका अपकर्षण उत्कर्षण भी नहीं होता, ना उदयावली में आते ना संक्रमण होता है, तो क्या होता है, जहां के वही रहते अपने जगह, उनको क्या कहेंगे, निकाचना, उन कर्मों को निकाचित कर्म कहेंगे। ये परमाणु की सहज रूप से ये स्वाभाविक ऐसी पोजिशन होती है, तो इसको ये तीन नाम दिए हैं। अब इसका जहां जो विषय आगे आएगा उसकी वहां चर्चा होगी, अभी तो हमने सामान्य ये नाम देखे। अब एक दो यहां नाम आएंगे, एक है स्थिति बंद, यानी नई जो स्थिति बन रही वो कितनी बनती है, सत्ता में जो पड़े हैं निषेक कितने ही सागरों के जो कुछ होगा उसको क्या कहेंगे, स्थिति सत्व। नया जो बनता है उसको कहेंगे स्थिति बंद, हो सकता है सत्व के इससे कम भी बंधे या अधिक भी बंधे, अभी कौन बांधता है कैसे बांधता है उसकी चर्चा अब नहीं, यथा समय करेंगे। क्या दो नाम देखे, ये नया जो बनता है उसके टॉप मोस्ट निषेक जो है वो वर्तमान समय से कितने काल पश्चात उदय आने योग्य है, उस काल को हम क्या कहेंगे, स्थिति बंद। और जो सत्ता में पड़ा है उसका जो टॉप मोस्ट निषेक कितने काल बाद उदय आने योग्य पड़ा है वहां, उसको कहेंगे स्थिति सत्व। दो बातें देखिए हम। अब जो अनुभाग की बात करते हैं, स्थिति में तो नीचे ऊपर ऐसा कहते हैं, अनुभाग कैसे बताया जाता है, तो उसके लिए हमने चार शब्द देखे थे, एक तो अनुभाग किसमें नापते हैं, तो शक्ति के अंश को अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। प्रत्येक परमाणु में अपने अपनी अलग शक्ति है, तो परमाणु का नाम है वर्ग। परमाणु को क्या कहा? वर्ग। वर्ग। अब जिन जिन परमाणुओं में अविभाग प्रतिच्छेद यानी शक्ति समान है, उन परमाणुओं को, यहां तो हमने स्थिति समान है देखा था, उसको निषेक कहा था। जिनमें शक्ति समान है ऐसे परमाणुओं के ग्रुप को, समूह को हम कहेंगे वर्गणा। उसमें और शक्ति एक अंश से ज्यादा है उसको कहेंगे दूसरी वर्गणा, तीसरी वर्गणा, चौथी वर्गणा। एक 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 से बढ़ती है, एक एक से बढ़ती हुई सभी का जो ग्रुप है उसको कहेंगे स्पर्धक। अब बीच में गैप होके एकदम डायरेक्ट इससे ये दो गुना हो जाती है, फिर एक एक से बढ़ती है, तो ये दूसरा स्पर्धक, तीसरा स्पर्धक, तो ये अनुभाग को बताने वाले हैं। इसमें मंद अनुभाग हम नीचे की ओर दिखा रहे हैं, नीचे का अर्थ अनुभाग मंद है। नीचे ने निषेक में नीचे ऊपर नहीं समझना, प्रत्येक निषेक में ये हीन अनुभाग तथा उत्कृष्ट अनुभाग वाले परमाणु अलग अलग पड़े हैं प्रत्येक निषेक। तो यहां जब हम अनुभाग की अपेक्षा केवल बात करेंगे तो ऊपर के अर्थात तीव्र अनुभाग, नीचे के अर्थात मंद अनुभाग, ये कब उदय में आना है उसकी यहां बात नहीं हो रही है। अनुभाग कितना है तो उसको इस बात से समझाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो हमने स्थिति का सत्व देखा, कल बात एक आई थी, ये स्थिति का सत्व दो प्रकार से घटता है, दो प्रोसेसेस अलग अलग हो सकते हैं। एक है बहुत सारी स्थितियां हैं, स्थितियां नहीं निषेक है, एक समय में इतने निषेक के इतने परमाणु उसके नीचे आ गए और यहाँ रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उसका नीचे के परमाणु में आ मिले, नीचे के निषेकों में आ मिले। दूसरे समय में और थोड़े उसमें से निकले और वो नीचे सर्वत्र दिए गए। तीसरे समय में और निकले, ऐसे एक अंतर्मुहूर्त में ये सब के सब नष्ट हो गए और ये सब निषेकों में उसका माल आ गया। यानी स्थिति घट गई, बहुत सारी स्थिति बहुत थोड़े समयों में घट गई, इसको क्या कहेंगे? स्थिति कांडक घात। घात यानी नष्ट होना, कांडक यानी टुकड़ा, और उसका प्रोसेस क्या है? जैसे वो गन्ना है ना, शेरड़ी, क्या कहते आप गुजराती में क्या कहते हैं? वो छीलते कैसे हम वर्टिकल पूरा, ऐसे इसमें से थोड़े थोड़े परमाणु नीचे आते रहते हैं सभी निषेकों में, और जो अंतिम लॉट है वो सभी के सभी निषेक नष्ट होकर, नष्ट होते हैं वो कर्म डायरेक्ट अभाव नहीं हो जाता, नीचे के निषेकों में आ मिलते। इस विधान को क्या कहा? स्थिति कांडक घात। यहां तक बात ख्याल में आई? अब हम जो यहाँ पढ़ रहे थे 24 पृष्ठ पर,
स्थिति बंधापसरण,
हाँ देखो, एक हमने नाम पढ़ा था पहले स्थिति बंधापसरण, ये शब्द कैसा तैयार हो रहा, स्थिति बंध और उसका अपसरण यानी घटना। वहां स्थिति सत्व घटता है कि नहीं घटता उसकी बात नहीं, परंतु नया जो बंध है, किसी समय में मान लेते हैं इतना बंध हुआ, इतना का इतना बंद हुआ, हम केवल अभी लाइन दिखाएंगे, दूसरे समय में हो सकता है इतना का उतना बंद हुआ। जब समय दर्शन प्राप्त करता है तो उस काल में क्या है, एक अंतर्मुहूर्त तक उतना का उतना बंद होता रहा, फिर क्या हुआ, स्थिति बंद जो है घट गया, अब अभी थोड़ा छोटा बंद होने लगा, वो भी अंतर्मुहूर्त तक बंधेगा, फिर उसमें और कटौती हो जाएगी, फिर यहाँ इतना बंद हो जाएगा अंतर्मूल। तो पहले बार इतना इतनी कटौती हुई, फिर इतनी कटौती हुई, फिर और उसमें उतनी कटौती हुई, तो ये घटते चला जाता है, उसको कहेंगे स्थिति बंध का अपसरण होना यानी घटना। ये स्थिति बंध अपसरण शब्द यहाँ आया था 10-11 पेज पर कहीं होगा, हाँ 22 पेज पर, देखो 22 पेज पर दूसरे नंबर दूसरे लाइन में ही लिखा है। तो ये स्थिति बंधापसरण होता है ना, घटता है, घटकर उतना का उतना अंतर्मूर्त तक बनता है, उस अंतर्मूर्त को कहेंगे स्थिति बंधापसरण काल। लगातार अंतर्मूर्त तक वो घटता हुआ ऐसा जो नया स्थिति बंध अंतर्मूर्त तक उतना का उतना होता है, बाद में जाकर घटता है, उसको क्या कहेंगे स्थिति बंधापसरण काल। ये अभी केवल सुनना है, पहली बार सुनते हैं या पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कुछ नहीं समझ में आया, सुनते रहना जीतू भाई, बिल्कुल समझ में आ जाएगी बात। और ये तो हमें केवल यहाँ हम शब्दों के अर्थ देख रहे हैं, एक्चुअल जहाँ प्रोसेस शुरू हो जाएगा इसका, समय दर्शन होता है तो क्या होता है और आगे भी शायिक समय दर्शन होता है तो क्या होता है, ये सब विस्तार से आने वाली बात। ये शब्द फिर दोबारा आएंगे तो उन दोबारा उसका अर्थ देखेंगे वहां, क्योंकि उसके अभी स्थिति बंधापसरण क्या होता है और स्थिति सत्व का घटना कैसे, स्थिति कांड घात द्वारा क्या होता है, जहां इनके नाम आएंगे उसको फिर हम दोबारा उसको देखेंगे। और कुछ याद नहीं आ रहा है समझ में तो बिल्कुल पूछना, ऐसा नहीं कि बाकी सब जानते हम ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये अभी हम स्थिति कांडक घात देख रहे थे 24 पृष्ठ पर, इसको दृष्टांत देकर समझा रहे हैं, यानी काल्पनिक उदाहरण देंगे हमें समझ में आवे, ऐसे हमारे जो पहचान वाले शब्द है संख्याएं है उसके द्वारा अर्थ बताएंगे। अब हम यहाँ पढ़ेंगे नया पैराग्राफ जो यहाँ दृष्टांत, जैसे स्थिति सत्व 48 समय मात्र था, किसकी बात है स्थिति सत्व की, सत्ता में जो परमाणु की सत्ता पड़ी थी निषेक पड़े थे वो कितने हैं, तो कहते 48 समय। ये इतने समय में इतना किसी का नहीं होता है, ये तो अनेक सागरों का वगैरह होता है। हमें समझाने के लिए क्या बताया, 48 समय की स्थिति पड़ी थी सत्ता में, उनके 48 ही निषेक थे, क्योंकि एक एक समय में एक एक निषेक पड़ा है तो 48 निषेक हुए, और इन निषेकों के 25,000 परमाणु थे सबके मिलकर, पहला दूसरा तीसरा निषेक चौथा, इसे ये सब निषेकों के मिलकर परमाणु की संख्या कितनी 25,000। उनमें ऊपर के 8 निषेकों का नाश करना है, कितने हमारे पास 48 है, और ऊपर के 8 निषेकों का नाश करना है, ऐसे 8 निषेक एक एक समय में एक एक घटेगा तो 8 समय लगते, परंतु थोड़े ही समयों में इनका नाश करेंगे आप। यहाँ तो दृष्टांत के तौर पर है ना, थोड़े लिए, वैसे वो पल्लियों के हो जाते हैं, सागरों के भी हो सकते हैं। तो ये उनके वहां कितने परमाणु है, 1,000 परमाणु, उनको अवशेष रहे 40 निषेकों में से ऊपर के 2 निषेक छोड़कर नीचे के 38 निषेकों में मिलाते हैं। ये तो बिल्कुल स्थूल उदाहरण है, हमेशा जो ऊपर से नीचे आते हैं, तो यहाँ इतना कांड ग्रहण किया तो उसके नीचे जो आवली काल मात्र जो निषेक है उसको लांग कर नीचे सर्वत्र उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहाँ जो निषेक नष्ट होने वाले हैं ऊपर के थोड़े थोड़े करके, उसके परमाणु कहाँ दिए जाएंगे, उसके अपने नीचे एक आवली में असंख्यात निषेक है, उसको छोड़कर उसके नीचे के कहाँ तक, बिल्कुल उदय के समय से लेकर सर्वत्र दिया जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे, ये सब नीचे आ रहे स्थिति कांडक घात, वहां उन 1,000 परमाणुओं में से कितने ही परमाणु पहले समय में मिलाते हैं, पहले समय यानी जो उदय में आ रहा है अभी वर्तमान में उसमें मिलाते हैं, कितने ही दूसरे समय में मिलाते हैं, इस तरह 4 समय तक मिलाते हैं। अंतर्मूर्त की बात है ना, तो 4 समय तक ये कार्य चलेगा, और 4 समयों में ऊपर के वो निषेक जो 8 हमने चुने थे उन पूरे का नाश हो जाएगा। वहां चौथे समय में अवशेष सर्व परमाणुओं को उन 38 निषेकों में मिलाने पर उन 8 निषेकों का अभाव होता है। अब ये जो गणित है बिल्कुल स्थूल रीति से उसके सुनना, नहीं तो आप पूछेंगे कि अर्तिसी कैसे नीचे निषेक रहे हा? क्योंकि एक एक निषेक तो गल जाएगा, उसकी यहाँ चर्चा नहीं। हम सोचेंगे कि दूसरा भी बनता होगा और वो 48 के 48 रहते होंगे। अब वो जो सूक्ष्म चर्चा है उसकी भी चर्चा है किताबों में, की जयधवला आदि में, तो उसकी भी पूरा वर्णन आता है। अभी तो हमें सामान्य यहाँ कथन देखना है और वो सामान्य उसका उदाहरण देखना है। ये 8 निषेकों का अभाव होता है, उनका अभाव होने पर 48 समयों का स्थिति सत्व था वह 40 समय का ही रहता है। 8 निषेकों का अभाव होकर नीचे के सभी निषेकों में वो दो छोड़े आवली के लिए और नीचे सर्वत्र दिया गया। ऐसे ही यथासंभव प्रमाण जानकर दार्ष्टान्त में विधान जानना। दृष्टांत का अर्थ होता है फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दिया, और दार्ष्टान्त यानी जिसके लिए वो एग्जाम्पल दिया है वो मूल बात है। यानी यथार्थ में, एक्चुअल में जब बात बनती है तो कहते उसमें ऐसा ही विधान समझना। वहां तो अनेक कोड़ा कोड़ी सागरों की स्थिति होती है और उसमें भी यथा योग्य कांडक होकर वो घटकर उतनी रह जाती है। अब यहां संज्ञाएं कहते हैं, संज्ञाएं नाम जिसको हम कहेंगे पारिभाषिक शब्द, टर्मिनोलॉजी। हर एक विषय की अपनी अपनी होती है ना। आपने वो कंप्यूटर की स्टोरी सुनी थी ना, माउस की और विंडो की और बर्निंग की, हाँ सीडी बर्निंग की है। तो ये संज्ञाएं कहते हैं। इस तरह ऊपर के निषेकों को क्रम से नीचे के निषेकों रूप परिणमा कर स्थिति का घटाना उसका नाम स्थिति कांडक या स्थिति खंड है। अभी हमने क्या देखा, ये जो देखा उसी को फिर दोबारा उसके नाम बता रहे हैं किसको क्या कहना। यहाँ क्या विधान, प्रोसेस क्या बना, स्थिति सत्व बहुत था, ऊपर के कितने ही निषेकों का एक अंतर्मूर्त में पूरा घात हो गया और उसके परमाणु नीचे आ मिले। जितने परमाणुओं का घात हुआ तो उस विधान को क्या कहेंगे, स्थिति कांडक घात। और ये स्थिति का खंड नहीं, स्थिति का टुकड़ा हमने चूज किया है, यह किया है नहीं कहने की बात है। ये तो सहज रूप से होता है, कोई सोच समझ कर नहीं कर सकता, तो इसका नाम है स्थिति कांडक या स्थिति खंड। ये कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी आने वाली है ना, तो उसको यहाँ बताने जा रहे हैं। एक कांडक में निषेकों का नाश करके जितनी स्थिति घटाई उसके प्रमाण का नाम स्थिति कांडक आयाम। आयाम मैंने लंबाई। अभी हमने जो उदाहरण देखा था 48 समय की स्थिति थी और उसमें 8 निषेकों का घात कर दिया, तो ये इसकी लंबाई या हाँ उसमें कितने निषेक है, तो 8 है, एक एक समय में एक एक है, तो कांडक का आयाम कितना होगा, तो 8। इसको कहेंगे स्थिति कांडक आयाम, यानी जितना कांडक ग्रहण किया और जो नष्ट होने वाला है इस कांडक की लंबाई समयों में गिनेंगे हम, पल्ले होगा तो पल्लों में गिनेंगे। ख्याल में आती बात, ये आयाम हुआ। उसका दृष्टांत में उसको हमने 8 समय गिना था। नाश करने योग्य निषेकों का, ये जो 8 निषेक है उनका नाश होने योग्य है, उनका द्रव्य, सर्व द्रव्य का अर्थ थे उनके सभी परमाणु। हमारे दृष्टांत में कितने थे नलिन भाई, 48 तो निषेक हुए, बहुत अच्छा 1000 देखो। और आप कहते हमको कुछ समझता नहीं है, कुछ हाई लेवल नहीं है, ये कॉमन सेंस है इसमें, करना नियोग में बस कहा, और सामने पुस्तक है, और नहीं वह समझते तो पूछ लेना। जैसे आपने अभी ताबड़तोक उत्तर दिया 1000 परमाणु, बहुत अच्छा। इसको द्रव्य ने, यहाँ परमाणु को द्रव्य कहते, उद्गल परमाणु है, कर्म के परमाणु है, उसको हमेशा यहाँ द्रव्य द्रव्य कहते, द्रव्य दिया, द्रव्य नीचे आया, ऊपर डाला, इसमें डाला, उसमें डाला, ये द्रव्य का अर्थ क्या है, परमाणु, कर्म के परमाणु। तो देखो नाश करने योग्य निषेकों का जो सर्व द्रव्य उसका नाम कांडक द्रव्य है। अभी हमारा जो उदाहरण लिखा ना उसको यहाँ फिट करेंगे तो कांडक द्रव्य हम कहेंगे हजार है। स्थिति कांडक आयाम कितना होगा वीरेश भाई? स्थिति कांडक आयाम अभी हमने जो उदाहरण दिया ना देखो, आठ
समय,
आठ समय कहो तो ये आठ समय उसका आयाम होगा। अभी हम आगे देखते हैं दृष्टांत में एक हजार हा? इस द्रव्य को, ये जो पूरा कांडक का द्रव्य है हजार परमाणु का, इस द्रव्य को अवशेष स्थिति के निषेकों में, अवशेष यानी रिमेनिंग, नीचे की जो स्थिति है जिसमें वो मिलाए जाएंगे उनमें मिलाते समय आवली मात्र निषेकों में नहीं मिलाए। यह हमने दो निषेकों में नहीं मिलाया ऐसा कहा था क्योंकि वो तो उदाहरण है, छोटी संख्या लेकर समझाना था। उसका नाम क्या है जिसमें नहीं मिलाते हैं? उसका नाम है अतिस्थापनावली। आवली का अर्थ होता है आवली प्रमाण निषेक, और जिसमें नहीं देते हैं उसका नाम है अतिस्थापना, अतिस्थापना की आवली। जहां जहां आवली शब्द आता है वो आवली तो समयों का प्रमाण है। कितने होते समय आवली में? जगन्य युक्ता संख्यात इतने समय है उसको आवली कहते हैं। और ये कैसी आवली है? अतिस्थापना आवली है। देखो हमने क्या देखा था अभी अभी, ये ऊपर के परमाणु जो निषेक है उनका पूरा घात होने वाला है और उनके परमाणु नीचे के निषेकों में आ जाएंगे। क्या सभी निषेकों में मिलेंगे? तो कहते कांडक के नीचे आवली प्रमाण छोड़कर उसको लांग कर नीचे सर्वत्र जाएंगे, उसको जंप करेंगे ऊपर, आवली में नहीं दिया जाएगा। जहां नहीं दिया जाता उसको कहेंगे अतिस्थापना, उसका प्रमाण आवली मात्र है इसलिए उसको कहेंगे अतिस्थापनावली। ख्याल में आई बात? आगे जैसे दृष्टांत में दो निषेक, यह दृष्टांत को साथ साथ लेके चल रहे क्योंकि वो दृष्टांत पहले बता चुके हैं। इनको छोड़कर अवशेष स्थिति के निषेकों में उस कांडक द्रव्य को मिलाना, यानी एक समय में थोड़ा मिलाया, दूसरे में मिलाया, तीसरे में नहीं मिलाया, तो एक कांडक का द्रव्य नीचे लाया और उसमें नीचे के निषेकों में मिलाया, उसका नाम कांडकोत्करण या कांडक घात है। कांडक का घात होना कांडकोत्करण भी कहते हैं, उत्कीर्ण भी कहते हैं उसको, कांडक का उत्कीर्ण होता है ऐसा भी कहेंगे। उत्कीर्ण उसके लिए कितना काल लगता है, तो उत्करण या उत्कीर्ण दोनों शब्द आते हैं। एक कांडक का उत्करण अंतर्मुहूर्त काल में पूर्ण होता है। क्या कहा? उत्करण का अर्थ क्या है? घात। इसका घात होने के लिए पहले समय में थोड़े आ रहे, दूसरे समय में, तीसरे समय में, अंतर्मुहूर्त में ये घात हो जाता है, तो इसको क्या कहेंगे? कांडकोत्करण काल, कांडक का उत्करण काल। कांडक का पूरा घात होने के लिए कितने समय लगेंगे? क्योंकि एक समय में तो एक कांडक का घात नहीं होता, हमने देखा ना उसके ऐसे हमने चीर चीर कर थोड़े 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 टुकड़े नीचे आएंगे, उसको कहेंगे फाली। एक लॉट नीचे आया तो पहली फाली, दूसरा लॉट आया दूसरी फाली, तीसरी फाली, इस तरह से अंतिम फाली। तो इसको जितना काल लगता है अंतर्मुहूर्त उसको कहेंगे कांडकोत्करण काल या स्थिति कांडक घात का काल ऐसा भी कहेंगे। एक कांडक का उत्करण नीचे से दूसरी लाइन अंतर्मुहूर्त काल में पूर्ण होता है उसे कांडकोत्करण काल कहते हैं। जैसे दृष्टांत में चार समय, इसलिए उन्होंने पहले दृष्टांत देके समझाया था। अब इस काल के प्रथम समय में कौन सा काल? कांडकोत्करण काल जो है, चार समय जो हमने यहाँ दृष्टांत में देखे थे उसका पहला समय। पहले समय में क्या हुआ? पूरे कांडक में जितने निषेक है उन सभी निषेकों में थोड़े थोड़े परमाणु नीचे आ गए। दूसरे समय में उन्हीं सभी निषेकों में से और परमाणु नीचे आएंगे। तो कहते उस कांडक द्रव्य का ग्रहण करके, कांडक द्रव्य तो हजार है, हजार के हजार एक समय में नीचे नहीं आते, तो जितना ग्रहण किया है जितने परमाणु अवशेष निषेकों में मिलाते हैं उसका नाम प्रथम फाली है। ये तो अभी अभी बात की ना मैंने, हजार परमाणु आठ निषेकों में मिलकर हजार है। पहले समय में जितने कुछ परमाणु नीचे आए उसका नाम क्या है? प्रथम फाली। द्वितीय समय में मिलाते हैं उसका नाम द्वितीय फाली है। इसी क्रम से अंत समय में मिलाते हैं उसका नाम चरम फाली। चरम यानी अंतिम। अंत समय के पूर्व समय में यानी लास्ट बट वन, यानी उसको ही क्या कहेंगे? उपांत समय में। उपांत अंत वाले के नजदीक वाला, यानी जो अंतिम नहीं उसको द्विचरम भी कहते हैं। मिलाते हैं आगे लिखा है उसका नाम द्विचरम फाली है। उपांत फाली भी कह सकते उसको। इस तरह एक कांडक समाप्त होने पर द्वितीय कांडक प्रारंभ होता है। अब ये जब समय दर्शन होता है और आगे भी बातें चलती है तब ये ऐसे कांडक घात जो होते रहते हैं, पहले बहुत स्थिति थी, इतना कांडक एक अंतर्मुहूर्त में उन्होंने घटाया, स्थिति घट गई, दूसरे अंतर्मुहूर्त में और इतनी सारी स्थिति ग्रहण की कांडक रूप से, और उसको घटाते घटाते उसका भी नाश हुआ। तो एक एक अंतर्मुहूर्त में इतनी इतनी पल्ले के असंख्या पे भाव प्रमाण स्थिति कट होती है। चलिए स्थिति का सत्व हो, बंध की बात अलग है। समय दर्शन होता है तो बंध तो उससे भी बहुत कम हो जाएगा, परंतु यहाँ तो बात स्थिति सत्व की चल रही है, यानी सत्ता में जो स्थिति है उसका घटना कौन से प्रोसेस से होता है? तो स्थिति कांडक घात से होता है। यहाँ तक बात ख्याल में आई? चलो अभी आगे। तो कहते हैं एक कांडक समाप्त होने पर द्वितीय कांडक प्रारंभ होता है, ऐसे ही अनेक कांडक होने पर, ये लगातार ऐसे हजारों 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 यानी वो अनेक कोड़ा कोड़ी कांडक होते रहते, उसको कहते वो नवे गुण स्थान की बात आई थी, संख्यात हजार कोड़ा कोड़ी कांडक होते रहते हैं। ऐसे कितने काल में? एक अंतर्मूर्त में ये छोटे छोटे अंतर्मूर्त इतने होते हैं। तो क्या होगा उससे? उसके स्थिति घटती चली जाती, क्योंकि जितनी स्थिति अधिक उतने तो संसार में रुलेगा उतना ज्यादा। तो यहाँ तो नया बंध उस जितनी स्थिति बाकी उससे छोटा होगा। समय दृष्टि के लिए नियम है, उस स्थिति बंध में वेरिएशन होगा उसकी बात नहीं है, परंतु वो घटकर स्थिति सत्व से छोटा ही बांधेगा। और मिथ्या दृष्टि अधिक भी बांध सकता है, उतनी भी बांध सकता है, कम भी बांध सकता है ना? एक बार उतनी स्थिति घटती है। हाँ। ऐसे हजारों हजारों कांड घात होते हैं। यहाँ लिखा ना, हाँ, वहां भी होते हैं, और जहां जहां तीन करण परिणाम हो, प्रायोगिक लब्धि में एक ही कांडक होता है। अब उसकी बात तो अभी आएगी आगे, प्रथमोक्षम सम्यक्त्व के प्रकरण। ऐसे ही अनेक कांडक होने पर अल्प स्थिति सत्व अवशेष रह जाता है, तब कांडक क्रिया नहीं होती। ये लास्ट में बिल्कुल क्षपणा के समय उसकी बात है, इतनी स्थिति घट जाती है कि अभी कांडक रूप से घात नहीं होता, तो क्या होगा? घात तो होने वाला है, तब कांडक क्रिया नहीं होती। एक एक समय व्यतीत होने पर, देखो अभी क्या कहेंगे, ये स्थिति इतनी घट गई कि थोड़ी रह गई, अब कांडक रूप से नहीं गिर जाएगा, तो क्या होगा? एक एक समय में एक एक नीचे का निषेक गलता चला जाएगा, अंतर्मूर्त में सारे नष्ट हो जाएंगे। तो कहते हैं एक एक समय व्यतीत होने पर एक एक समय क्रम से घटकर उस अवशेष स्थिति का नाश होता है, इस तरह कांडक विधान जानना। कांडक में क्या क्या होता है, वो कहाँ नाश होता है, उसके भी अलग रूल है, वो जहां उसकी बात आएगी वहां उसकी चर्चा होगी। ये आगे आने वाले जो संज्ञाएं है, टर्मिनोलॉजी है, उसकी अभी पहचान करा रहे हैं हमसे। कांडक नहीं, एक कांडक का विधान को भी कांडक विधान ही कहेंगे, मैंने प्रोसेस, परंतु ये विधान चलते रहता है एक के बाद एक के बाद एक के बाद, कहीं कहीं एक ही कांडक होता है। कहाँ? प्रायोगिक लब्धि में एक कांडक घात होता है, परंतु उसको स्थिति कांडक विधान जो चलता रहे हजारों हजारों हो गए, वो अपूर्वकरण परिणामों में हो गए।
जितने भी कांडक हो गए एक होने या अनेक बाद में जो एक एक समय में जो व्यतीत होता है उसको भी इसमें इंक्लूड करना
नहीं, उसको नहीं करना, उसकी बात पूछो। उसको उसको कांडक नहीं, उसको कांडक घात नहीं कहेंगे, उसको तो हम कहेंगे ना एक एक समय गल जाता है, या तो स्वयं अपने रूप से या पर रूप से उदय में आकर उतने निषेक निकल जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, यानी सत्ता में से उसका अभाव हो। एक कांडक के लिए अंतर्मूर्त रखते हैं, ऐसे हजारों कांडक भी अंतर्मूर्त में ही बाहर, एक एक निषेक तो एक समय में जाता है। अभी जो बचे हुए निषेक अंतर्मूर्त में हो तो हो जाते, एक एक समय में एक एक निषेक। अब अपकृष्टि विधान कहते हैं, देखो हमने पहले देखा था कि जो स्थिति सत्व है सत्ता में पड़ा हुआ, वो दो प्रकार से उसका घात होता है, नाश होता है। देखो निकालो पेज नंबर 23 पर है आपको, किस कहा 21 नीचे से दूसरा पैराग्राफ। जो स्थिति सत्व पाया जाता है, यानी सत्ता में जो कर्मों की स्थिति है पड़ी है, उससे एक एक समय व्यतीत होने पर एक एक समय घटता ही है। ये तो एज इट इज, एक एक समय निकल जाएगा तो एक एक समय कम होगा, प्रोवाइडेड नया बंद बड़ा नहीं होगा तो, बंद बड़ा होगा तो और वो तो चलते रहेगा, उसकी सत्ता की स्थिति बनी रहेगी उतनी उतनी। तो कहते परंतु दर्शन चारित्र लब्धि के निमित्त से, ये दर्शन यानी सम्यक दर्शन और चारित्र की प्राप्ति होती है, यानी जीव के परिणाम ऐसे होते हैं। तो क्या होता है, तो स्थिति कांडक विधान से, ये स्थिति कांडक विधान, ये दर्शन समय दर्शन की प्राप्ति में और सम्यक चारित्र में और ऊपर के देश संयम को या सकल संयम के प्रकरण में आता है, या अपकृष्टि विधान से स्थिति सत्व का घटना होता है। दो कौन से प्रोसेस बताए सुशीला भी, स्थिति कांड घात पहले में पहले और दूसरा अपकृष्टि विधान। अभी तक हमने स्थिति कांड घात देखा, कांडकों में वो स्थिति घटती चली जाती, वो तो स्वरूप ख्याल में आया स्थिति कांड घात का। अब ये दूसरा जो विधान है अपकृष्टि विधान कहते हैं। अभी हमने अपकर्षण नाम सुना ही है ना, अपकर्षण होने ने स्थिति का घटना, उसको स्थिति का अपकर्षण कहेंगे, अनुभाग के घटने को अनुभाग का अपकर्षण कहेंगे। यहां स्थिति की बात चल रही है। देखो विवक्षित कर्म प्रकृति के, विवक्षित ने पर्टिकुलर किसी एक एक प्रकृति की बात कर रहे हैं, उसकी बात चलेगी। विवक्षित कर्म प्रकृति के सर्व निषेकों संबंधी सर्व परमाणुओं को अपकर्षण भागार का भाग देकर एक भाग मात्र परमाणु ग्रहण किए, उसका नाम अपकृष्ट द्रव्य। अब देखो इसको समझो, हमने अभी अभी देखा था ये सत्ता में इतने सारे निषेक पड़े हैं, ये कर्म के निषेक, इस तरह से वो क्रमहीन रूप उसकी ये बनती है, नीचे के निषेकों में परमाणु ज्यादा होते ऊपर में कम होते, इसलिए हमेशा मैं ऐसा ट्रायंगुलर बताता हूं। अब यहाँ क्या कहा, ये पूरा वाक्य फिर पढ़ेंगे। विवक्षित कर्म परमाणु, हम किसी ज्ञान आवरण की या मोहिनी की जिस किसी की बात कर रहे हैं, उसके सभी परमाणुओं की ऐसी निषेक रचना बताएंगे। ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, सत्ता में ऐसे कर्म कहीं लाइन लगाकर खड़े नहीं रहते कि अभी खिरना है तो पैर के तलवे तक जाके पहुंच जाए, उसके निशे की रचना ऐसी कुछ अंदर कुछ नहीं होती। जैसे हम देखते हैं वो स्टॉक आपका शेयर का भाव ऊपर नीचे ऐसे दिखाते हैं, ग्राफ दिखाते हैं, वैसे ये ग्राफ है। तो यहाँ क्या बताते हैं, इन सभी परमाणुओं की जो टोटल है सर्वद्रव्य, उसको विशिष्ट संख्या से भाग देंगे, क्योंकि अपकर्षण होकर इन परमाणु निषेकों में से कुछ द्रव्य अभी नीचे आएगा, सभी में से, सभी में वो उदयावली को छोड़ो, नीचे के एकावली को छोड़ दो, तो इनमें जितना द्रव्य है उसको विशिष्ट संख्या से भाग देना, उसको क्या कहेंगे, अपकर्षण उत्कर्षण भागहार। भागहार ने जिस संख्या से हम डिवाइड करते हैं उस संख्या को भागहार कहते। हार रहने वाला, भागने वाला यानी वो भाग देने वाला, जमगे नहीं, जानन हार, जानने वाला, भगवान को कहेंगे तारन हार। ऐसे क्या भागहार, जिस संख्या से भाग देते हैं उस संख्या को भागहार कहते, और जिसको भाग देते उसको भाज्य कहेंगे। यहाँ किसको भाग देना है, ये पूरी द्रव्य प्रमाण, इस पूरी संख्या को, परमाणुओं के टोटल संख्या को भाज्य कहेंगे। उसको भागहार किससे दिया, अपकर्षण उत्कर्षण भागहार से। जो वैल्यू आ गई, इन्हें एक भाग आया ना उसमें, मान लेते वहां लाख हो गया और हमने उसको 500 से भाग दिया, कितने आए देखो, बराबर है 200 है। एक लाख को हमने 500 से भाग दिया तो कितना आया, 200 आया। वैसे यहाँ जो एक भाग का वैल्यू होगी अपकर्षण भागहार से भाग देने पर, वहाँ संख्या अनंत है और उसमें हमने किसी असंख्या से भाग दिया है तो बड़ी संख्या है वैसे उसके लिए। तो जो इतना एक भाग प्रमाण यहाँ परमाणुओं का सब में से ग्रहण किया, सभी निषेकों में से ग्रहण किया, अब उसका रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो कहाँ कितना दिया जाएगा उसको कहेंगे। ये कहाँ से निकाला, सभी निषेकों में से निकाला। अब यही देखो, अब हम पढ़ेंगे अपकृष्टि विधान जो बता रहे हैं ना, वहाँ फिर से दोबारा पढ़ेंगे।
कृष्टि का क्या अर्थ होता है, अपकृष्टि नाम क्या,
अपकर्षण से कर्षण से कृष्टि शब्द देगा। अपकृष्टि विधान यानी अपकर्षण प्रोसेस, विधान यानी वहाँ जो प्रोसेस चल रहा है, प्रक्रिया चल रही है,
स्थिति का घटना जिस तरह से,
हाँ, ये अपकर्षण द्वारा जो घटना होता है उसको अपकृष्टि विधान कहते हैं। जैसे मिथ्या दर्शन से मिथ्या दृष्टि शब्द तैयार हुआ, दर्शन से दृष्टि हुआ वो कर्षण से कृष्टि हुआ सर्जन से सृष्टि होता है, मालूम है, सर्जन यानी उत्पन्न कराना, वो सृष्टि उससे कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, भगवान सब कुछ करता है, भगवान को कुछ टाइम पास नहीं होता तो सब वो जो हम कहते ना, वो तो ऊपर के उन स्थानों में सूक्ष्म कृष्टि होती है, लोक की उत्पादर कृष्टि होती है, यानी वहाँ अनुभाग के घटाने को वहाँ कृष्टि कहा, पर यहाँ अपकृष्टि की बात है, अपकर्षण करने को यहाँ अपकृष्टि कहा। ये शब्द कैसे तैयार होते वो अगर ख्याल में लेते, क्योंकि ओरिजिनल जो शब्द आए हैं संस्कृत प्राकृत में से वही यूज करते हैं, और ये शब्दों का अर्थ यदि पता है तो ये बात ख्याल में, उसका अर्थ ख्याल में आता है। फिर पढ़ेंगे विवक्षित कर्म प्रकृति के सर्व निषेकों संबंधी सर्व परमाणुओं को यानी टोटल द्रव्य को अपकर्षण भागार का भाग देकर, अपकर्षण भागार नामक जो संख्या है उसका भाग देंगे, उससे डिवाइड करेंगे, एक भाग मात्र परमाणु ग्रहण किए, ग्रहण किए ने हमने अभी समझे उसको पकड़ा, इन्हें लिए हमने उसमें से, सभी निषेकों में से लिए, उसका नाम अपकृष्ट द्रव्य है यानी अपकर्षित द्रव्य है, अपकर्षण किया हुआ द्रव्य। अपकर्षण क्यों, क्यों अपने अपने नीचे कहीं कहीं निषेकों में दिया जाएगा। उस अपकृष्ट द्रव्य में से अभी जो एक भाग परमाणु सभी निषेकों में से जो ग्रहण किया है जिसका अपकर्षण होने वाला है, उसमें से कितने ही परमाणु तो उदयावली में मिलाते हैं। अब देखो मैंने क्या कहा, इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक भाग प्रमाण कहाँ कहाँ से आए, सभी निषेकों में से। अभी उसमें से कुछ क्या होगा ये हम मान लेते, इतनी उदयावली है कुछ हिस्सा उदयावली में चला जाएगा। उदयावली में जाता हम कहेंगे वो है तो अपकर्षण ही, उसको उदीर्णा नाम देते हैं, और वो उदय में आकर वो फिर जाने वाला। ऑलरेडी यहां निषेक थे ही थे, इन एडिशन इसमें से और द्रव्य यहां चला गया। एक बात, कितने ही परमाणु गुण श्रेणी आयाम में मिलाते हैं। ऑर्डिनरी अपकर्षण होता है तो नीचे में उसका रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है, बस इतना ही होता है। अब यहां किसकी बात चल रही है, दर्शन और चारित्र लब्धि के निमित्त से क्या होता है उसकी बात चल रही है। समय दर्शन होता है तो उस समय या आगे भी जहां जो जो कुछ करण परिणाम होते हैं वहां क्या होते हैं, तो कहते हैं गुणश। ये तो उदयावली में तो दे दिया कुछ, इसके ऊपर ये जो निषेक है, कुछ निषेक अंतर्मूर्त प्रमाण, उसमें ये असंख्यात गुणा क्रम से दिया जाता है। ऑलरेडी तो थे ही थे निषेक, उसमें और इतना जुड़ गया, तो ये किस तरह से दिया जाता है। पहले निषेक में उदयावली के ऊपर पहले निषेक में जितना दिया, मान लेते हम एक नंबर दिया, उससे असंख्यात गुणा हम मान लेते चार, उससे असंख्यात गुणा तीसरे में 16, उससे असंख्यात गुणा चौथे में 64। यदि 85 परमाणु नीचे देते हैं तो चार गुणा क्रम से दिए जाए। जितने में दिया जाता है उसको क्या कहेंगे, गुण श्रेणी। गुणित प्रमाण में श्रेणी यानी पंक्ति, असंख्यात गुणा क्रम से वहां तक दिया जाता है। पहला जो लॉट आया है उस लॉट में से एक भाग कितने ही परमाणु नीचे उदयावली में दिए, कितने ही परमाणु यहां गुण श्रेणी में दिए जाए। अब आगे देखते हैं, और अवशेष परमाणु उपरीतन स्थिति में मिलाते हैं। ये गुण श्रेणी के ऊपर के जो निषेक है उनको कहेंगे उपरीतन स्थिति, उसमें भी क्रम भिन्न रूप से इस तरह से मिलाया दिया जाए, इस तरह से ये एक्स्ट्रा इन एडिशन मिला है इसमें। इन्हीं में से निकाला और इन्हीं में इस तरह से रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ। बाहर से तो कहीं नहीं आए, सत्ता में तो थे ही थे, सभी निषेकों के थोड़े थोड़े परमाणु अपकर्षण भागार से भाग देकर निकाले। जो एक लॉट ग्रहण किया उसमें से कुछ तो उदयावली में दिए, कुछ गुण श्रेणी में दिए और कुछ ऊपर दिए। कहां कितना भाग दिया, किस प्रमाण में दिया, उसकी बात विस्तार से आएगी। ये मूलभूत बातें समझने जैसी है। हाँ, उसको कहेंगे ये जो ऊपर के निषेक है, ये नीचे यानी उदय वाले निषेक, इसको कहेंगे उपरीतन स्थिति, उपरीतन निषेक, उसमें दिया। ये इन एडिशन जो दिया, यहां दिया ना, निक्षेप किया, उसमें ऐड किया, उसको निक्षेप वाला द्रव्य कहेंगे। अभी किसको क्या कहना उसके नाम बता रहे। वहां वर्तमान समय से लेकर आवली मात्र समय संबंधी जो निषेक, उनका नाम उदयावली है। देखो ये नीचे के, ये नीचे उदय का समय है, एक दो तीन चार ऐसे आवली प्रमाण निषेक, यहां बताने के लिए तीन चार ही बताएंगे। एक्चुअल में वहां आवली प्रमाण है, जघन्य युक्ता संख्यात इतने हैं असंख्यात। तो कहते हैं यहां आवली प्रमाण जो उदय के समय से जो निषेक है उसको कहेंगे उदयावली। आवली शब्द लगाए ना, उदय के सन्मुख ऐसे आवली मात्र निषेक, उसको कहेंगे उदयावली। अभी उदयावली में द्रव्य जो दिया गया है, द्रव्य देना है ना, यहां जो परमाणु डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, पहले तो वहां निषेक थे ही थे, अभी जो अपकर्षण करके जो यहां दिया गया है वो किस प्रकार से दिए जाएंगे, कौन से निषेक में कितना मिलेगा द्रव्य, तो कहते उदयावली में देने योग्य द्रव्य को, उसमें टोटल जितना द्रव्य मिलाया जाएगा उसको निषेक निषेक प्रति, यानी प्रति प्रति निषेक पर निषेक एवरी निषेक, एक एक चयहीन क्रम से मिलाते हैं। चय यानी फिक्स डिफरेंस, नीचे जितना दिया, चय यानी फिक्स डिफरेंस, यानी एक फिक्स डिफरेंस, उसमें थोड़ा कम थोड़ा कम थोड़ा कम, ये जो कम दिया जाता है उसकी जो प्रमाण क्वांटिटी है वो निश्चित है, फिक्स है वहां के लिए जो कुछ है। तो किस तरह से दिया जाएगा, नीचे ज्यादा ऊपर ऐसा क्रम, एक क्रम ही। ये ऑलरेडी यहाँ निषेक थे उदयावली में, और हम दोनों ओर से इसलिए बता रहे कि वो समान दिखे, इसलिए उदयावली में इतने निषेक थे। ये बाजू में जो दिखा है वो एडिशनल दिया, वो किस तरह से दिया, घटते क्रम से दिया। इसको क्या कहेंगे, चयहीन क्रम से देंगे। उन नीचे ज्यादा है ना, ये सफेद जो दिखा है वो ऑलरेडी थे, और उसमें ये हमने साइड से मिलाया, बुढ़ियावली में एक्स्ट्रा दिया। उसको क्या कहेंगे, चयहीन क्रम से दिया। एक एक निशेक में, नीचे के निशेक में ज्यादा दिया, उसके ऊपर थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम, इस तरह से। उन आवली मात्र निषेकों के ऊपरवर्ती, ऊपर ये नीचे के आवली मात्र निषेक हो गए जो यहाँ नीचे दिखा है, उसके ऊपर क्या दिखा है, यहाँ पर गुण श्रेणी। तो उन आवली मात्र निषेकों के ऊपरवर्ती यथासंभव अंतर्मूर्त, यथासंभव क्यों, ये जो गुण श्रेणी का जो लंबाई है उसका जो अंतर्मूर्त का प्रमाण है वो हीनाधिक होता है, वो कहाँ बड़ा होता है कहाँ कम होता है, वो तो जब उसका विषय आएगा तब उसकी चर्चा होगी। तो यथा योग्य अंतर्मूर्त के समय संबंधी निषेकों का नाम गुणश्रेणी आयाम। क्या कहा, पहले तो उदयावली में जो दिया था वो क्रमहीन रूप से दिया, उदयावली के ऊपर के कितने ही निषेक, कितने हैं, तो अंतर्मूर्त प्रमाण, अंतर्मूर्त का प्रमाण यथा योग्य है। तो उसमें कैसे दिया, उसका नाम गुणश्रेणी आयाम है, और उस गुणश्रेणी आयाम में देने योग्य द्रव्य को, ये जो हमने अपकर्षित द्रव्य का एक भाग निकाला था उसमें से कुछ द्रव्य उदयावली में दिया। कैसे दिया, क्रमहीन रूप से दिया, चयहीन कहा उसको। फिर जो गुणश्रेणी आयाम में कितना ही पोर्शन दिया उसको किस विधान से देंगे, तो वहां कहते हैं निषेक निषेक प्रति असंख्यात गुणा क्रम से मिलाते। टोटल जितना देंगे उसमें से पहले निषेक में जितना मिलाया उससे असंख्यात गुना दूसरे में, उससे असंख्यात गुना, उससे असंख्यात गुना। वो समझाने के लिए हमने क्या बताया, यहाँ एक परमाणु मिला है तो यहाँ चार मिला है, तो यहाँ सोलह मिला है, तो यहाँ चौसठ मिला है। हमने तो एक भी असंख्यात है, असंख्यात गुना वाला है वो। उनके ऊपरवर्ती, ऊपरवर्ती करते ऊपर वाले, बाद में उदय आने योग्य ऐसे जो है, उनके ऊपरवर्ती निषेकों में अवशेष सर्वस्थिति संबंधी निषेकों का नाम उपरीतन स्थिति है। ये ऊपर के बाकी सब कैसे, उपरीतन स्थिति, किसके ऊपर, यहाँ गुण श्रेणी के ऊपर। उसमें भी फिर दोबारा दिया जाएगा, तो इसमें भी जो साइड से दिया जाएगा यहाँ पर वो भी ऐसे ही घटते क्रम से दिया जाएगा, चयहीन क्रम से। देखो तो उसका नाम उपरीतन स्थिति। उनमें अंत के आवली मात्र निषेकों में तो द्रव्य नहीं मिलाया जाता, उसका नाम अतिस्थापनावली है। यहां पर भी वही बात है, अंतिम निषेक का द्रव्य उसके नीचे आवली छोड़कर नीचे सर्वत्र दिया जाएगा, उदय के समय से लेकर गुण श्रेणी में और उपरीतन सर्वे। ऊपर ऊपर का दूसरा निषेक उसके अपने नीचे की आवली छोड़कर नीचे सर्वत्र दिया जाएगा, तीसरा निषेक उसका अपने नीचे की आवली छोड़कर सर्वत्र दिया जाएगा। तो इसमें तो ऊपर से कुछ आने वाला नहीं है, दूसरे निषेक में भी ऊपर से कुछ आने वाला नहीं है, तीसरे निषेक में भी ऊपर से कुछ आने वाला नहीं है। तो आवली प्रमाण निषेक में तो ऊपर से कुछ नहीं आएगा, परंतु उन आवली के निषेकों का द्रव्य नीचे जाएगा अपने अपने नीचे आवली छोड़कर। एक एक निषेक का हिसाब अलग लगाना है, फिर भी यहाँ कॉमनली पूरा ही कथन करने के लिए ऊपर के आवली प्रमाण निषेक छोड़ दो और नीचे सर्वत्र ये ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कैसे होगा, चय घटते क्रम से, जैसे उदयावली में चय घटते क्रम से दिया था वैसे गुण श्रेणी में असंख्यात गुणा नीचे से ऊपर, असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा दिया था। उपरीतन स्थिति में क्रमहीन यानी चय घटते क्रम से दिया, यही प्रोसेस सब जगह आगे चलकर आने वाला है। पूरा मोक्ष मार्ग में ऐसे ही विधान होता है, हर समय ऐसा आकर्षण होते रहता है, आकर्षण होते रहता है, गुण श्रेणी बनती रहती है। अब जो ये नीचे नीचे आएगी उदय के समय में, तो ये इतना इतना द्रव्य खिर जाएगा। इंटेंसिटी शुभ प्रकृतियों में बनती है और अशुभ में घटती है, दोनों प्रोसेस होते, दोनों होते हैं।
स्थिति तो घटी नहीं ना,
स्थिति बाय दैट टाइम ऊपर वो कांडघात भी हो रहे।
अच्छा,
अभी क्या है बताने के लिए एक प्रोसेस एट ए टाइम बताएंगे, परंतु ये सभी कितने ही प्रोसेसेस एट ए टाइम चलते हैं एक ही समय में। ये सभी प्रोसेस ऊपर से कांडघात का भी चल रहा है, यहाँ गुण श्रेणी भी बनी है, स्थिति का घटना भी चल रहा है, यहाँ पर संक्रमण की बात नहीं की, कितने का ही संक्रमण भी चल रहा है, परंतु उसको अति स्थापना वाली उसमें से निकलेगा, उसमें दिया नहीं जाएगा, क्योंकि अपने अपने नीचे आवली छोड़ना है। मान लेते हैं, देखो अभी आप सोचो, चार समयों की आवली मानेंगे हम, तो यहां के पहले निषेक का द्रव्य कहां चला जाएगा, नीचे आवली छोड़कर, यानी वो पांचवा भी छोड़ा और छठे में चला जाएगा। ये इसको पकड़कर आवली अगर पकड़ेंगे तो भी पांचवे में चला जाएगा, पांचवे में गया, चार में तो नहीं गया, पांचवे में गया, दूसरे का किस में गया, पांचवे में भी गया, पांचवे में नहीं गया, छठे में गया, तीसरे का सातवें से नीचे सर्वत्र, चौथे का आठवें से नीचे सर्वत्र। तो पहले दूसरे तीसरे चौथे में से माल निकला, परंतु उनमें कहीं से नहीं है, पांचवे से देना चालू हुआ, पहले निषेक का द्रव्य पांचवे में गया है, यानी ऊपर की आवली में द्रव्य दिया नहीं गया है, उसमें से नीचे आया है, इसलिए इसको कहेंगे अति स्थापना वाली। वैसे एक एक निषेक की बात करेंगे, दूसरे निषेक के माल तीन चार और पांच में नहीं गया, छह में आया है नीचे, परंतु उसमें से गया भी है और उसमें आया भी, इसलिए वो तो हम कहेंगे कहीं ना कहीं से तो पांचवे में आया है ना, तो उसको अतिस्थापना नहीं कहेंगे, अतिस्थापना मात्र ऊपर की आवली को कहेंगे। ख्याल में आती बात, ये नए नाम है सब, नए सारे प्रोसेसेस भी नए अपने लिए, और हम भी सब पहली बार ही सुन रहे हैं। आप ऐसा नहीं सुनना समझना कि मैं ही सुन रहा हूँ पहली बार, ये सब लोग पहली बार सुन रहे हैं। हो गया समय, बाकी बात कल करेंगे।
जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक न हो सदा देत हो।